एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी में हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार संज्ञा का। आज के इस अंक के लिए हमने चुनी है वर्ष 1928 में रिकॉर्ड और जारी की हुई गैर फिल्मी गजल मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है। पियारा साहब की आवाज, कलाम है दाग दहलवी का, मौसिकी पियारा साहब की है। इस गजल के बहाने जाने भूले बिसरे गायक पियारा साहब की जिंदगी और उनकी गुलकारी के बारे में, साथ ही दाग दहलवी की शायरी की खासियत पर एक नजर। इस गजल के तमाम शेरों को इस अंक में सुनते हुए महसूस कीजिए दाग की लेखनी की आधुनिक शैली को। जिस रिकॉर्डिंग सत्र में ये गजल रिकॉर्ड हुई थी, उसी सत्र में पियारा साहब ने एक अन्य गजल भी रिकॉर्ड की थी, जिसके आधार पर 1988 की फिल्म शूरवीर के लिए गीतकार SH बिहारी ने एक गीत लिखा था। कौन सी थी वो गजल, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही है रचिता देश पांडे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर रुक कर रहे हैं ग्रामोफोन संगीत के उस भूले बिसरे दौर की तरफ, जिसमें उस जमाने के नामचीन फनकारों ने नींव रखी रिकॉर्डेड संगीत की। तमाम सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पाबंदियों के बावजूद 20वीं सदी के उन प्रथम 3 दशकों में कलाकारों और रिकॉर्डिंग कंपनियों ने जो धरोहर खड़ा किया है, आज वह अनमोल बन चुका है। ऐसे ही एक भूले बिसरे लेकिन बेहद अनमोल फनकार रहे हैं गायक पियारा साहब। आज उनकी गाई हुई एक गजल के बहाने उनके जीवन की एक झलक हम देखने जा रहे हैं। सन 1929 में रामगोपालपुर, म्यानमेन सिंह जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, से प्रकाशित हरेंद्र किशोर राय चौधरी के पुस्तक द म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया में हमें पियारा साहब से संबंधित कई विश्वसनीय जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि पियारा साहब का ताल्लुक अवध के नवाब साजिद अली शाह के परिवार से है, जो कलकत्ते के मोतिया बुर्ज के स्टेट प्रिजनर हुआ करते थे। पियारा साहब की दक्षता गजल और दादरा गायकी में मानी जाती है। शुरू शुरू में वे शौकिया तौर पर गाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने गायन को अपना पेशा बना लिया था। पियारा साहब की गायकी की खास बात ये थी कि वे बहुत ऊंची पट्टी पर गाते थे, जिसे अंग्रेजी में फॉल्सेटो कहा जाता है। कुछ रिकॉर्डिंग्स में तो कहना मुश्किल हो जाता है कि कोई पुरुष गा रहा है या नारी, लेकिन बावजूद इसके पियारा साहब पूरे सुर में गाया करते थे। इतनी ऊंची पट्टी में गाने के बावजूद उनका लगाया हुआ एक सुर भी इधर से उधर नहीं होता था। कलकत्ते के महाराजा सर जतींद्रनाथ टैगोर की सेवा में पियारा साहब नियुक्त हुए, जहां रहते उन्हें भारत के एक से एक दिग्गज संगीत शिल्पियों से संगीत सीखने का मौका मिला। प्यारा साहेब को कई राजा महाराजाओं और रईसों से स्वर्ण पदक और पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए, जिनमें मैसूर, कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल सहित कई और राज्य शामिल हैं। उस जमाने में ये अफवाह मशहूर थी कि पियारा साहेब ने अपनी गायकी से विपुल धन संपत्ति बना ली है, लेकिन उनके किसी भी शिष्य का उनके जैसा नाम नहीं हुआ, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पियारा साहेब का शिष्य कहा जा सके। ये भी कहा जाता है कि साधारण जनता को पियारा साहेब के दर्शन भी नसीब नहीं होते थे, क्योंकि पियारा साहेब हमेशा व्यावसायिक सेवा की ही मांग किया करते थे। दोस्तों, ये तो थी हरेंद्र किशोर राय चौधरी की किताब से प्राप्त कुछ जानकारी। अब हम रुक करते हैं प्रसिद्ध शोधकर्ता माइकल कीनियर के शोध कार्य की ओर, जिसमें उन्होंने भी पियारा साहेब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उनके अनुसार प्यारा साहेब के जीवन से संबंधित बहुत कम विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध है। उनके जन्म और मृत्यु की तारीख की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। 1870 के दशक से 1940 के दशक तक रहा होगा। प्यारा साहेब का स्थायी निवास कलकत्ते के मोतिया बुर्ज इलाके के गार्डन रीच नामक स्थान पर था। उनकी आरंभिक संगीत शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार के संगीतज्ञों में से एक थे। प्यारा साहेब ने हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय संगीत की धाराओं जैसे कि दादरा, ठुमरी और गजल में महारत हासिल की और अपने समय के सर्वोच्च पुरुष गायकों की कतार में जा खड़े हुए। हालांकि प्रथम ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग वर्ष 1902 में बताई जाती है, जिस पर हमने इससे पहले मिस शशिमुखी और गौहर जान पर केंद्रित कड़ियों में बातें की हैं। माइकल कीनियर के शोध के मुताबिक प्यारा साहिब की ऊंची पट्टी पर गाई हुई आवाज को ड्वार्किन एंड सन्स तथा एच बोस जैसे कंपनियों के सिलेंडर्स पर वर्ष 1901 में रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से प्यारा साहिब का नाम प्रथम रिकॉर्डेड कलाकारों में शामिल है। वे 2.5 दशकों तक सबसे अधिक बिकने वाले रिकॉर्डेड कलाकारों में से एक बने रहे। द सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स द्वारा प्रकाशित द रिकॉर्ड न्यूज पत्रिका से भी प्यारा साहिब के रिकॉर्डिंग संबंधित अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। इसमें नवाबों के नवाब खिताब से सम्मानित प्यारा साहिब की मृत्यु का वर्ष 1945 दर्ज किया गया है। 1905 से 1940 के दरमियान प्यारा साहिब की गाई लगभग 450 रचनाएं लगभग 300 रिकॉर्ड्स पर जारी हुई। इस पत्रिका के अनुसार प्यारा साहिब का ताल्लुक शाह आलम द्वितीय के शाही परिवार से था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि प्यारा साहिब ने जतींद्रनाथ टैगोर के यहाँ रहते हुए कथक नृत्य भी सीखा था और अक्सर गायन और नृत्य दोनों किया करते थे, बिल्कुल महिला कलाकारों की तरह। इस शैली को अदाकारी का गाना कहा जाता था, जिसमें गायन और नृत्य आपस में घुल मिल जाते थे। पुरुष कलाकारों में अदाकारी का गाना शैली में दो ही नाम मशहूर हुआ करते थे, एक प्यारा साहिब और दूसरा मोजुद्दीन खान। टैगोर परिवार के साथ अनुबंध में होने की वजह से रिकॉर्ड कंपनियों को प्यारा साहिब से रिकॉर्डिंग्स लेने से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी और रिकॉर्ड लेबल पर भी टैगोर को श्रेय देना पड़ता था। यह 1905 से 1910 तक के समय काल की बात है। इसके बाद जब प्यारा साहिब टैगोर परिवार के अनुबंध से मुक्त हो गए, तब इस तरह के क्रेडिट नोट की आवश्यकता समाप्त हो गई। प्यारा साहिब की गाई रचनाएं ग्रामोफोन, मोनार्च, एचएमवी, निकोल, द ट्विन, रामाग्राफ और ब्रॉडकास्ट लेबलों पर जारी हुए। अत्यंत लोकप्रिय होने की वजह से उनके गाने बार बार जारी होते रहे। वर्ष 1916 में उन्होंने कलकत्ते में आयोजित मुस्लिम लीग कन्वेंशन में इकबाल की प्रसिद्ध कविता चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा को गाया, जिसे मुस्लिम लीग ने अपना एंथम बना लिया। मौके का फायदा उठाते हुए ग्रामोफोन कंपनी ने प्यारा साहिब की आवाज में इस गीत को रिकॉर्ड पर जारी किया, जो प्यारा साहिब के बेस्ट सेलर्स में शामिल हुआ। अपने उम्र के 6 दशक में प्यारा साहेब बम्बई और कलकत्ते में स्टेज शोज किया करते थे, जिनकी टिकटें अच्छी खासी महंगी हुआ करती थी। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने नामी कलाकार का कब निधन हुआ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और ना ही इसकी खबर किसी अखबार में छपी। आज प्यारा साहेब जिंदा है तो बस उस गुजरे दौर के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर। जैसा कि हमने पहले बताया, प्यारा साहेब गजल गायकी के उस्ताद माने जाते थे, इसलिए आज के इस अंक के उनकी गाई हुई एक गजल हमने चुनी है और ये गजल दाग दहलवी की लिखी हुई है। नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी उर्दू के सबसे मशहूर शायरों में से माने जाते हैं। उनका ताल्लुक उर्दू शायरी के दिल्ली स्कूल से रहा। उनके कलामों की खासियत रही है रोमांटिसिज्म, जिसमें कामुकता भी है और नरमी भी, दर्द भी है और मोहब्बत का जुनून भी। कम से कम फारसी लफ्जों का इस्तेमाल और अधिक से अधिक सरल और शुद्ध उर्दू का प्रयोग, जिससे जन साधारण में उनकी गजलें इतनी ज्यादा लोकप्रिय रही हैं और आज तक उनकी ताजगी बरकरार है। दिल्ली को ब्रिटिश काल में अंग्रेजी प्रभाव की वजह से दिल्ली भी कहा जाता है। इसी से नवाब मिर्जा खान ने अपना तखल्लुस दाग दहलवी रख लिया, यानी दिल्ली का दुखी शायर। दाग की गजलों को समय समय पर हर छोटे बड़े कलाकारों ने गाए, कुंदन लाल सहगल से लेकर तलत महमूद, मेहंदी हसन, मोहम्मद रफी, मुकेश और फिर जगजीत सिंह, हरिहरन से लेकर श्रेया घोषाल तक ने दाग की गजलों को अपनी आवाजें दी। एक आध बार फिल्मी गीतों के रूप में भी दाग सुनाई दिए। मसलन 1954 की फिल्म बाजबंद में लता मंगेशकर ने गाई उनकी गजल आरजू है ये तेरे निकले दम तुम्हारे सामने, द तुम हमारे सामने है और हम तुम्हारे सामने। 2003 की फिल्म तहजीब में सुजाता भट्टाचार्य ने गाई गजल, सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। प्यारा साहेब की आवाज़ में दाग के जिस गज़ल को आज हमने चुना है वह है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज़रा महसूस कीजिए कि कितनी आधुनिक शैली में दाग ने ये लिखा था। इस शेर को पढ़ते हुए या सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी हिंदी फिल्मी गीत का मुखड़ा हो। आगे गजल में शेर है, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर है, मजमा ए खूबी मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। लफ्जों का हल्का फुल्का अंदाज होते हुए भी रोमांटिसिज्म की गहराई बहुत अधिक है दाग के इन शेरों की। इसी गजल का एक और शेर अर्ज है, जवाब इस बात का उस शोक को क्या दे सके कोई, जो दिल लेकर कहे कमबख्त तो किसी दिल से मिलता है। छुपाए से कोई छुपती है अपने दिल की बेताबी, कि हर तारे नफस अपना रगे बिस्मिल से मिलता है। तारे नफस का मतलब है सांसों की डोर, और रगे बिस्मिल का यानी जख्मी दिल। कहिए क्या कहेंगे आप दाग के इन विचारों के बारे में, बस कमाल है ना। प्यारा साहब ने इस गजल को क्या खूब अंजाम दिया है। उनकी इस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए महसूस होती है उनकी पतली और ऊंची आवाज़ में एक अलग ही समा बन जाता है जब जब इसे सुनते हैं। प्यारा साहब की इस गज़ल की रिकॉर्डिंग वर्ष 1928 में बम्बई में आर्थर जेम्स ट्वाइन ने की थी, जो कि द ट्वाइन रिकॉर्डिंग कंपनी के 10 इंच ट्वाइन रिकॉर्ड पर उसी साल जुलाई माह में जारी हुई थी। उसी रिकॉर्डिंग सत्र में प्यारा साहब की गाई और भी कई गज़लें रिकॉर्ड हुई थी, जिनमें शामिल थी, कब से खड़े हैं तेरे मिलने को प्यारे, गोरी धीरे चलो गगरी छलक न जाए, इन दिनों जोश जुनून है तेरे दीवाने की, मस्त शराब होकर सब राज खोल डाले, हाय क्या पूछते हो दर्द किधर होता है। आखिरी गजल कीजी जलाल हरिपुरी का कलाम है, जिन्होंने लिखा था, पूछते हैं वो हमें दर्द कहाँ उठता है, एक जगह हो तो बता दे कि यहाँ उठता है। प्यारा साहब ने इसे जरा सिंप्लीफाई करके गाया था, शायद इसे मीटर मिलाने के लिए। और दशकों के बाद फिल्मी गीतकार SH बिहारी ने प्यारा साहेब वाले संस्करण को ही अपनाते हुए 1988 की फिल्म शूरवीर में अनुराधा पोडवाल का गाया गीत लिखा था, होए क्या पूछते हो कि दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बता दो कि इधर होता है। गीत के अंतरे बिहारी साहेब के लिखे हुए होने की वजह से इस गीत में काजी साहेब का नाम नहीं दिया गया।
तो दोस्तों आज बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर किसी गीत से संबंधित रोचक बातों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने,
रेडियो प्लेबैक इंडिया।